बीबीसी इंडिया बोल तारीख 11 जुलाई दिन शनिवार। मैं हूं विनीत खरे। व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की एक के बाद एक मौत से पूरा मामला रहस्यमय हो गया है। क्या व्यापम घोटाले की जांच इसकी सबसे कमजोर कड़ी है? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच आम लोगों पर इस घोटाले का क्या असर हुआ है? अगर आपका जीवन भी व्यापम घोटाले से प्रभावित हुआ है तो हमें इन नंबरों पर तुरंत टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001 या फिर बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर अपना नंबर छोड़ें। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। बोस्निया में सर्बनीत्सा नरसंहार की 20वीं बरसी पर मौजूद सर्बिया के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वुटिच पर वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने हमला किया। लोगों ने उन पर बोतलें फेंकी और अपशब्द कहे। बरसी के दौरान वुटिच नरसंहार में मारे गए लोगों में से 136 लोगों को श्रद्धांजलि देकर लौट रहे थे जिस वक्त उनके साथ यह हादसा हुआ। जुलाई 1995 में हुए इस नरसंहार में करीब 8000 बोस्नियाई नागरिकों की हत्या की गई थी जिसे सर्बिया की सेना ने अंजाम दिया था। ग्रीस की संसद ने कर्ज संकट से निपटने के सरकार के ताज़ा प्रस्तावों को बहुमत से मंजूरी दे दी है। देर रात तक चली संसदीय कार्यवाही में 251 सांसदों ने सरकार को कर्जदाताओं से समझौता करने के लिए समर्थन दिया लेकिन प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास अपनी ही सिरिज़ा पार्टी के 10 सांसदों का मत हासिल नहीं कर सके। इनमें दो मंत्री और संसद के अध्यक्ष शामिल हैं। पूर्व वित्त मंत्री यानिस वारूफाकिस सत्र में शामिल नहीं हुए। मलेशियाई हवाई जहाज MH17 में मारे गए यात्रियों के परिजन शनिवार को श्रद्धांजलि सभा के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर में इकट्ठा हुए। इस विमान को पिछले साल यूक्रेन के ऊपर से गुजरते वक्त मार गिराया गया था। इस दौरान वहां मौजूद मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने कहा,
A full closure to this incident is absolutely vital so that all the next of kin can...
इस मामले में पूरी तरह से जांच की जानी ज़रूरी है। जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों को शांति नहीं मिलेगी। जो भी देश इसकी जांच से जुड़े हैं उन्हें इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रजाक के शब्द। MH17 को गिराने के लिए यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है हालांकि रूस इन आरोपों को हमेशा से नकारता रहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने बलात्कारी और पीड़िता के बीच मध्यस्थता का निर्देश देने का अपना विवादास्पद आदेश वापस ले लिया है। साथ ही मद्रास हाई कोर्ट ने अभियुक्त को दी गई अग्रिम जमानत भी रद्द कर दी है। कोर्ट ने अभियुक्त को 13 जुलाई तक सरेंडर करने को कहा है। इस आदेश की सुप्रीम कोर्ट और कानूनी जानकारों ने आलोचना की थी। साथ ही पीड़िता ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों मद्रास हाई कोर्ट के इस निर्णय को गलत बताते हुए कहा था कि यह महिला के सम्मान के खिलाफ है। मिस्र में सिनेमा की पहचान रहे अभिनेता उमर शरीफ का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 83 साल के थे। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में जन्मे शरीफ को लॉरेंस ऑफ अरेबिया और डॉक्टर जिवागो में उनकी प्रभावशाली भूमिका के लिए याद किया जाता है। शरीफ को 1962 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया में उनकी भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया था। 3 साल बाद उन्हें डॉक्टर जिवागो के लिए फिर से गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल में आज का विषय है व्यापम घोटाले से एक के बाद एक जो मौतें हो रही हैं उसकी अब सीबीआई जांच के आदेश। अदालत ने कहा है कि सीबीआई जांच हो इसकी, लेकिन क्या इस घोटाले से आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है? अगर हुआ है तो कैसे? कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहेंगे, लेकिन अगर आप हमें सुन रहे हैं और आपका जीवन भी इस घोटाले से कहीं प्रभावित हुआ है तो हमें ज़रूर फ़ोन करें। और आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यापम घोटाले की जाँच इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होंगे बीबीसी संवाद संवाददाता नितिन श्रीवास्तव जो मध्य प्रदेश का पूरा दौरा करके निकले हैं और उन्होंने बहुत सारी कहानियां भी रिपोर्टें भी फाइल की हैं, और प्रशांत पांडे जो विसल ब्लोअर हैं इस पूरे मामले के, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ कॉमेंट्स जो बीबीसी हिंदी का पन्ना है उस पर लोगों ने भेजे हैं, आइए कुछ वो सुन लेते हैं। दीपक शर्मा ये लिखते हैं कि व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों को फांसी होनी चाहिए। राजकुमार सीकरवर ये कह रहे हैं कि इस व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब सत्य उजागर होगा, दोषियों को सजा मिले। मोहम्मद अतर खान हैं ये लिखते हैं कि पूरा स्टेडियम भरा है देखने वालों से, खबरची भी कैमरे के साथ डटे हुए हैं, पुलिस भी मौजूद है, फील्डिंग भी ज़बरदस्त है, हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर बैटिंग कौन कर रहा है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। 1811-7000 मुफ्त टेलीफोन नंबर, हमें बहुत सारे श्रोता कॉल कर रहे हैं, आइए सुनते हैं कौन कॉल कर रहा है। हेलो,
धर्मजीत सोनभद्र से।
हाँ धर्मजीत जी, कहाँ सोनभद्र से बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
सोनभद्र ईपी।
अच्छा बताएं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यापम घोटाला हुआ वो तो भाजपा शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में सरकार है उन्होंने तो अपनी नाक के नीचे करा दी, बाकी कांग्रेस वो अपने चुनावी फायदे के लिए इतना होड़ मचा रही है, जबकि इतने बड़े और विस्तृत रूप से बड़े घोटाले की सीबीआई जांच पहले ही करानी चाहिए थी। अगर जब सीबीआई जांच करानी ही थी तो कांग्रेस के दबाव में आकर अब शिवराज सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए।
यही
जांच उनको बहुत पहले ही शुरू में ही करा लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, अपने राज्य की ट्रांसपोर्ट से कराई उन्होंने जांच।
जी
दोनों पार्टियां।
जी जी, आप बने रहे हमारे साथ। संजीव सैनी हैं ये इंदौर से हमें हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिएगा गुना से जुड़े हैं। संजीव सैनी आप बात सुन रहे हैं, सोनभद्र से हमारे कॉलर हैं, आप क्या कहेंगे? आप मध्य प्रदेश में हैं, आपका जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है या प्रभावित हुआ भी है कि नहीं, और लगातार जो रिपोर्टें आ रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे?
जी सर, हमारा जीवन बहुत प्रभावित हुआ है, थोड़ा नहीं सर बहुत प्रभावित हुआ है। हर बार मैं खुद एग्जाम दे चुका हूँ व्यापम के, और हर बार मैं 2, 5, 10 नंबर से रहा हूँ, और इसकी सर जांच बिल्कुल होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए इसकी।
जी
इसके जो आरोपी हैं वो सर सामने आना चाहिए, और जो कि लक्ष्मीकांत शर्मा ने अभी एक पेपर में मैंने देखा था सर, लक्ष्मीकांत शर्मा बोले थे कि मतलब मैं सेहरा मेरे इसके आरोपी सब है पर सेहरा।
संजीव सैनी से हमारा संपर्क कट गया है। सोनभद्र से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। 1811-7000 पर कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो
हेलो,
हाँ नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
जी मैं नंद किशोर सिंह बोल रहा हूँ, रामपट्टी से, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी बिहार से।
हाँ नंद किशोर जी, आप बहुत ज्यादा दूर नहीं है मध्य प्रदेश से, बताइए क्या सोचते हैं ये जो व्यापम घोटाले के बारे में आप?
ये तो बहुत बड़ी घोटाले हुआ है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक दूसरे पे प्रति आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इससे साफ तौर पर जाहिर नहीं हुआ है कि ये किया है कौन। जब तक सीबीआई ऑफिसर को ये नहीं सौंपा जा सकता है तब तक कुछ भी करना मुश्किल है कि, और जो भी किया है बहुत बुरा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने देश के हित में जो भी करना चाहिए था।
चलिए कार्यक्रम में आप बने रहिए। नंद किशोर हमारे साथ बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव हैं, उनसे संपर्क करने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। नितिन, बारिश आज ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, तो शायद इसी कारण ऐसा हुआ है। आप मध्य प्रदेश का दौरा करके लौटे हैं, बहुत विसल ब्लोअर्स जो थे या फिर जो प्रभावित हुए हैं परिवार वो अफेक्टेड हुए, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी। राजनीति इस पर चलती रहेगी, सीबीआई जांच भी चलती रहेगी, 2000 लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर भी बात चलती रहेगी, लेकिन आप हमें बताएं कि सामाजिक जीवन है लोगों का, विश्वास एग्जामिनेशंस पर, वो किस तरह से, उस पर किस तरह से असर पड़ा है?
अवनीत, अगर इस बात का मैं दो टूक जवाब दूं तो सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश के पूरे राज्य में या मैं ऐसे कहूं कि जिन जिन इलाकों में गया वहां पर लोगों का विश्वास हिल चुका है, टूट सा गया है, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, ये बात परीक्षाओं के साथ साथ तमाम तरह की सरकारी नौकरियों की भी है। तो अब आप सोचिए कि तमाम ऐसे हजारों लाखों छात्र हैं जो मेहनत से पढ़ाई करके कुछ अचीव करना चाहते हैं, किसी भी तरह की पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर उनको ये समझ में आता है कि सैकड़ों छात्र फर्जी तरीके से कथित रूप से एडमिशन पा रहे हैं, नौकरियां पा रहे हैं, तो उनको तो लगता है कि उनकी मेहनत जो है वो एकदम बेमानी हो गई है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर इस तरह से सक्षम नहीं है कि वो अपने अपने पद प्रतिष्ठा या किसी और चीज का उपयोग या दुरुपयोग करके नौकरी या एडमिशन पा सके।
जी व्यापम घोटाला जो हमारे श्रोता बहुत सुन रहे होंगे, व्यापम की आखिर क्या है? दरअसल आरोप है कि जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है जो आयोजित करवाती थी परीक्षाएं, और उसमें आरोप है कि पैसे लेकर मनमानी तरीके से उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया, यानी परीक्षाएं होती थी, परीक्षा मान लीजिए मुझे देनी है तो परीक्षा दे कोई और रहा है मेरे नाम पर और लाखों रुपए उसको दिए जा रहे हैं, परीक्षा चल रही है तो परीक्षार्थी फिल्म देख रहे हैं और परीक्षा कोई और दे रहा है ये। और जब मेरी आखिरी आपसे बात हुई थी नितिन, आपने बताया था कि ये एक तरह का इस पर बॉलीवुड फिल्म भी बन सकती है।
बिल्कुल विनीत, और इसमें हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में जाकर जब मैंने तमाम लोगों से बात की, तमाम तरह के जो विसल ब्लोअर हैं, तो ये समझिए कि लोग जो थे वो इस मुद्दे को 2006-2007 से मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठा रहे थे, और ऐसा नहीं है कि 2013 में एकाएक कुछ विसल ब्लोअर्स के हाथ में कुछ बहुत सारे डिजिटल प्रमाण मिले और एकदम से ये मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद ये कहते हैं कि साहब ये इस पूरे कार्रवाई में, इस पूरे मामले पर सारा श्रेय अगर किसी को जाना चाहिए तो वो मैं हूं, क्योंकि सारी कार्रवाई सारी जांच मैंने शुरू कराई। लेकिन पिछले 8 साल से अगर ये मामला उठा हुआ था और ये मामला चल रहा था तो इतनी ढिलाई क्यों हुई जांच में, सारा मुद्दा इसी पर है।
जी हमारे एक श्रोता हैं चैतन्य भारत, उन्होंने बीबीसी फेसबुक पन्ना है जो उस पर लिखा है कि कभी पैसे से कभी अपनों के पावर से योग्यता को दबाया गया, अपने वालों को लाल फीता लगाया गया, यही है व्यापम घोटाला। अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस तक यही चलता रहा है, पहली बार भांडा फोड़ हुआ है, शिवराज ने जांच शुरू करवाई, अब इस लाल फीताशाही पर अंकुश लगेगा, उम्मीद तो यही है। बहरहाल हमारे साथ कुछ और श्रोता हैं, दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी अगर आपको आवाज़ आ रही है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? और आपने नितिन की बात सुनी होगी, विश्वास पर असर पड़ा है, आम लोगों पर असर पड़ा है, आप क्या कहेंगे?
जी
आवाज़ आ रही है दिनेश जी?
जी बिल्कुल, इंदौर से बात कर रहा हूँ मैं।
हाँ इंदौर से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे दिनेश चंदेल?
हाँ सर, ये कि जो मध्य प्रदेश का अभी जैसे हम करीब मैंने न्यूज पे पढ़ा है कि 76 लाख जो युवा वर्ग है वो इस घोटाले से प्रभावित हुआ है। इसमें अब जो युवा वर्ग है उसके अलावा उसकी फैमिली भी उससे प्रभावित होती है। जब परिवार में एक कोई, जैसे मेरे कई फ्रेंड सर्कल में PMT में एक नंबर से रहा है वो, उसके बाद उसको क्या हुआ MBBS के लिए नहीं हो पाया तो उसको BHMS करना पड़ा। कहीं ना कहीं जो योग्यता है वो नीचे रह जा रही है और सर जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो ऊपर जाते हैं। जैसे कि अभी जो SI में हुआ है ऐसे ही कि जो कांस्टेबल बन चुका है वो योग्य था लेकिन जो अयोग्य है वो घोटाले के जरिए SI बना है। तो कहीं ना कहीं अयोग्य व्यक्ति ऊपर जा रहे हैं। इससे क्या होता है सर कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो खराब हो जाता है। जब कोई अयोग्य व्यक्ति ऊपर जाता है तो वो योग्य व्यक्ति के ऊपर शासन करता है, तो कहीं ना कहीं जो योग्यता है वो दब चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इससे क्या होता है रिश्वत भी।
जी दिनेश, हाँ ये नितिन बताएं।
मैं दिनेश जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये इन्होंने बताया कि ये इंदौर के निवासी हैं आप, ये बताएं कि इस तरह के जो मामले हैं 2008 2009 2013 से बाहर आए हैं, निकल कर आए हैं, आप शुरुआत से उस प्रदेश में रह रहे हैं, आपको या एक आम आदमी को क्या इन चीजों की जरा से भी भनक नहीं थी कभी?
जी नितिन पूछ रहे हैं दिनेश कि क्या आपने इनके बारे में सुना था या आपको जरा सा संदेह हुआ था कि इस तरह का कोई घोटाला चल रहा है,
चीजें होती हैं वहां पर?
जी सर, अभी जैसे एग्जाम देते हैं उस टाइम पे हम लोगों को ऐसा एहसास नहीं हो पा रहा था कि इसमें घोटाला हो रहा है। हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ का युवा वर्ग सभी एग्जाम दे रहा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं लगता था कि इसमें इतना बड़ा घोटाला निकलेगा और इतने लोग फर्जी निकलेंगे। पर अब जो बाद में जब ये रिपोर्ट आ रही है STF की, ये हत्याएं हो रही हैं, उसके मौतें हो रही हैं, उसके बाद पता चला कि इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला था, बहुत बड़ा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी सर हमें।
बहुत शुक्रिया आपका दिनेश। आप कार्यक्रम में बने रहे, हमारे साथ कुछ श्रोता और हैं 1811-7000 पर। हेलो आपका आवाज आ रही है? रामवीर हैं, धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी आप बात सुन रहे हैं नितिन की, आपने बात सुनी, दिनेश चंदेल हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए थे, आप कुछ कहना चाहेंगे?
हम ये कहना चाहते हैं। हेलो
जी आपकी आवाज आ रही है धर्मवीर?
धर्मजीत मेरा नाम है, धर्मवीर नहीं,
माफ की जी, धर्मजीत बताएं।
तो जो व्यापम घोटाला वो दिनेश चंदेल साथ बोल रहे थे इंदौर से, उन्होंने तो बिल्कुल सही कहा, आम आदमी को जो ऐसे ऐसे घोटाले वो आम आदमी की नजर की भनक में आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतने अच्छे और चांगुल और चतुर व्यक्ति बैठे हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान जो स्वयं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मैं उन्हीं के ईपी सटे प्रदेश से बोल रहा हूँ, बने हुए हैं मुख्यमंत्री कुर्सी पर, वो उन्होंने सबसे बड़ी तो उन्होंने ये गलती की कि सीबीआई जांच की अब रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। अगर लगानी ही थी तो बहुत पहले लगा देते, अगर नहीं लगानी थी तो लगाते ही नहीं, अपने राज्य की ट्रांसपोर्ट से जांच करा लेते।
बहुत शुक्रिया जी धर्मजीत जी, आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नितिन हमें ये भी बताएं कि बहुत सारे जो परिवार प्रभावित हुए हैं वो गरीब हैं और उन्होंने इस अगर अगर हम माने घोटाले से कहीं जुड़े हुए तो लाखों रुपए दिए हैं, उन पर किस तरह से आर्थिक तौर पर फर्क पड़ा है? क्योंकि अब तो कई किसी के यहाँ मान लीजिए डॉक्टर है तो नौकरी गई, उस पर मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, वो बताएं हमें।
देखिए विनीत, ये बड़ा पेचीदा मामला है। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसे परिवार में गया जिनके जिनके जो परिवार के मुखिया थे खुद डॉक्टर थे, वो एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे और उनका नाम इसमें आया, उनको मतलब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 6-6.5 महीना वो जेल में रहे, तो उनकी जो पूरा परिवार जो है वो तहस नहस हो गया इस तरह से। और जब जेल से निकले उसके बाद वो बीमार रहे और अचानक एकाएक एक दिन अस्पताल में भर्ती हुए और सरकार के मुताबिक लिवर इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन अब ये समझिए कि उनके परिवार में 5 और जिंदगियां, यानी 4 उनके बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, इस सत्र में उनके बच्चों के स्कूल के एडमिशन फीस के पैसे नहीं है परिवार के पास, बीवी जो है उनकी वो नौकरी कर नहीं सकती, तो एक तरह से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हालांकि ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि वो उनका हाथ था कि नहीं था, क्योंकि मुकदमा दर्ज था और जांच अभी जारी थी, लेकिन जाहिर है उनकी मौत के साथ एक पूरा चैप्टर तो क्लोज हुआ हुआ, लेकिन इन 5 जिंदगियों के ऊपर व्यापम घोटाले का
जी। इंदौर से दिनेश चंदेल, अगर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूं, बहुत सारे परिवार है जैसा कि मैंने नितिन से भी पूछा, गरीब हैं, किसान परिवार हैं, उन्होंने पैसा दिया होगा, उन पर उनकी जिंदगी पर किस तरह से असर पड़ा है?
उनकी जिंदगी तो ऐसा है कि सर वो परिवार बर्बाद हो रहा है सर। एक्चुअल में होता क्या है कि जो जो पैसा देते हैं, जिसके पास पहले से पैसा है वो अगर 50 लाख रुपए दे रहा है तो उसके लिए इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिसके पास कुल 50 लाख की पूंजी है या फिर 25 लाख की पूंजी है, वो 25 लाख कर्ज लेके पैसा देगा, फिर उसका बेटा ऐसा ही बनेगा जो भी नौकरी लेगा, उसके बाद क्या होगा, पकड़ा जाएगा और बेटा जेल जाएगा, उसका जो फार्मर बैकग्राउंड होगा तो वो एकदम गरीब हो जाएंगे, कर्जा निपटा नहीं पाएगा, उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है आत्महत्या, इससे क्या होता है कि सर जो
चलिए दिनेश जी हमारा संपर्क कट गया है। 1811-7000 पर एक महिला हमारे साथ, महिला श्रोता हमारे साथ जुड़ी हुई है। हेलो
हेलो, मैं
थोड़ा सा तेज बोले,
मैं छात्रा से
जी, बताइए अपनी बात रखिए।
जैसे मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, हर जगह ऐसा ही होता है, बिहार में भी मैं जैसे टीचर का एग्जाम देने गई थी, एंट्रेंस पेपर तो पहले ही सारे स्टूडेंट के हाथ में आ जाते हैं, जैसे करना एग्जाम देने गई,
जी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन नितिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ कह रही है कि सिर्फ मध्य प्रदेश तक कन्फाइन नहीं है ये समस्या।
बिल्कुल, ये हमारी श्रोता ने बहुत बहुत बड़ा सवाल उठाया है विनीत, और ये मेरे ख्याल से शायद सबसे अहम चीज है पूरे मामले में, क्योंकि आप देखिए कि बिहार में उन्हीं के प्रदेश की बात करें, कई दशकों से टीचरों के रिक्रूटमेंट में उनके उनकी सरकारी नौकरियों को लेकर विवाद रहा है, कई बार ऐसा हुआ है सैकड़ों टीचरों के ऊपर मुकदमा चला है, जांच चली है, कईयों ने इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के मामले कई बार आ चुके हैं पीएमटी परीक्षाओं में, यहां तक कि पिछले वर्ष की बात है यूपी पीसीएस का जो एग्जाम था उस एग्जाम का प्रीलिम्स का पेपर लीक होने तक की बात हुई थी, राजस्थान में ये मामला उठा है। तो मतलब ये व्यापम जो है, मेरे ख्याल से व्यापम जो है ये इतना व्यापक इसलिए हो गया क्योंकि इसकी तह तक जांचकर्ता पहुंचने की कोशिश करते रहे और बड़े पैमाने पर मामला उठ के आया। लेकिन इम्पोर्टेंट बात विनीत ये है कि सालों लग गए हैं, वर्षों लग गए हैं इस मामले को बनाने में, और अगर दूसरी जगहों पर मुझे लगता है कि जांच कायदे तरीके से होगी और तह पे तह खुलेंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि व्यापम की तरह के दूसरी जगह मिसाल मिलेगी।
जी हमारे साथ प्रशांत पांडे भी हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, विसल ब्लोअर हैं, इस केस से जुड़े हुए हैं। प्रशांत हमें दो चीज़ें बताइए, पहले तो क्या इस जिस तरह से जांच हुई है आप मानते हैं कि जो आज का विषय भी कि उसकी कमज़ोर कड़ी है व्यापम की, और दूसरी चीज़ सीबीआई की जो जाँच की बात कही गई है, सीबीआई की जाँच पर कई बार सवाल भी उठे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या सच सामने निकल कर आ पाएगा?
देखिए सबसे पहले तो आपको और सभी श्रोताओं को भी ये बता देना चाहूंगा कि दिस वॉज अ टेक्निकल केस, को टेक्निकल केस था ये,
और इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जुड़े बहुत सारे टेक्निकल फीचर्स रहते हैं जिसमें जिन्हें हम सीधी भाषा में ब्लंडर्स बोलेंगे। कुछ ब्लंडर्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने किए हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए शायद ऐसा किया गया हो, पर आई बिलीव कि जैसे जैसे जब सीबीआई सीन में आएगी और जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो ना केवल उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि जो रिलेटेड एविडेंस है और बाकी चीजें हैं जुड़ी हुई वो सब भी सामने आएंगी।
जी प्रशांत, हमारे साथ बने रहिए, कुछ श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं 1811-7000 पर। हेलो।
हेलो।
हाँ, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं।
हाँ जी, मेरा नाम रोहित कौरव है और मैं यहाँ नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ सर। मेरा कहना यह है सर कि लोहे का अगर स्वाद जानना हो तो आप लोहार से मत पूछिए, आप उस घोड़े से पूछिए जिसके मुंह में वो लोहा पड़ा है लगाम के रूप में। इसी प्रकार से सर इन लोगों ने एक राजनीतिक दंगल के रूप में परिवर्तित कर दिया है व्यापम घोटाले को, पूरे के पूरे व्यापम घोटाले को सर। और इसमें जो जो पीड़ित पक्ष हैं उनको उनको सबको इग्नोर कर दिया है सर इन लोगों ने।
जी हेलो। जी आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो, लगता है उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। नितिन, आपने बहुत ध्यान से, मैं बहुत कागज़ आपने देखे हैं, डॉक्यूमेंट्स इससे जुड़े हुए, जिस तरह से जांच हुई और जो आज का विषय भी है, मैं पहले भी कह रहा था, क्या व्यापम घोटाले की जांच इसकी कमजोर कड़ी है, क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल विनीत, मुझे लगता है कि व्यापम घोटाले जो आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और हमारे साथ प्रशांत यहां पर है, इनकी तरह के कई और लोग हैं, विसल ब्लोअर्स हैं जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आए हैं, हाई कोर्ट से रिजेक्ट किए जाने के बावजूद मुझे लगता है कि जांच ही एक ऐसी चीज है जो कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से ये यहाँ पे मामला पहुंचा है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि ये बताना जरूरी है कि स्पेशल टास्क फोर्स जो मध्य प्रदेश में इस मामले की जांच कर रही थी या कर रही है, उसको उसके ऊपर हाई कोर्ट ने SIT यानी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम वो मॉनिटरिंग के लिए बनाई। उसमें एक पूर्व जस्टिस है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, CRPS के फॉर्मर DG है। लेकिन हमेशा से विपक्ष को और मध्य प्रदेश में लोगों को इस बात पर शंका रही है कि आखिरकार जो STF इस मामले की जांच कर रही थी वो STF तो राज्य पुलिस की है, राज्य प्रशासन है,
तो फेयर जांच हो पाएगी कि नहीं।
जी, ये मेरे ख्याल से प्रशांत से पूछा जाए कि प्रशांत को कितना भरोसा रहा है प्रदेश की जांच पर।
चलिए प्रशांत से मैं पूछूंगा, लेकिन दो श्रोता हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। हेलो।
हेलो,
नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
नमस्कार, मैं कुलवीर वाकर बोल रहा हूँ, गांव ब्रांड जिला मनगढ़ राजस्थान से।
जी अपनी बात रखिए।
मैं कहना चाहता हूँ कि सर जो भर्ती में होते हैं घोटाले वो हर प्रकार की भर्ती में होते हैं, डिफेंस की हो या किसी प्रकार की हो, अगर बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उनमें भी घोटाला होता है।
नहीं नहीं, आपके साथ कभी हुआ है? नहीं, इस तरह से जनरल कहना कि हर जगह घोटाले होते हैं, क्या आप
डिफेंस की? तो हमने देखे, हम रहते हैं समाज में, हमें क्या पता नहीं है, डिफेंस में भी जो में होते हैं और जो परीक्षाएं होती हैं बोर्ड की उनमें भी जो पेपर है वो पहले आ जाते हैं।
जी, लेकिन ये जो घोटाला हुआ है क्या?
गया हूँ और वहाँ पर भी पहले पेपर आ जाता है।
अच्छा,
ये व्यापम से भी बहुत बड़े घोटाले और भी तो बहुत हैं।
जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे समझना चाह रहा था कि क्या आप पर कभी आपने आप सफर किए हैं, आप सफर हुए हैं या फिर आप पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन लगता है संपर्क उनसे कट गया है। एक और श्रोता हमारे साथ हैं।
हेलो।
जी थोड़ा सा तेज बोले, कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो सर, मैं मदन लाल पाठक अम्बेडकर नगर से बोल रहा।
थोड़ा ताकत लगा के बोले मदन लाल जी, बोलिए।
जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर CBI जांच इस व्यापम घोटाले की मान लीजिए होती है तो सर इसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं वो तो पकड़े जाएंगे, लेकिन जो राजनेता हैं वो किसी न किसी रास्ते से सर जरूर छूट जाएंगे, और बिना राजनेताओं की मिलीभगत के घोटाला इतना बड़ा नहीं हुआ सर।
जी प्रशांत, ये नितिन ने भी यही बात रखी थी, हमारे श्रोता भी यही कह रहे हैं।
मैं इनको ये क्लियर करना चाहूंगा कि अधिकारियों के साथ साथ जो हमारी लड़ाई है वो यही है कि कोई भी आदमी, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी इसमें छूटे नहीं। और देखिए, थोड़ा तो हमको सम्मान अपने संविधान पे विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, घोटाले की बात करना तो आसान है, हम लोग सब बात करते हैं, सब कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, पर उसको हटाने के लिए या उस चीज को खत्म करने के लिए हमने क्या किया वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई और बाहर से, दूसरे देश से नहीं आएगा आपके घोटाले हटाने के लिए। अगर कहीं ना कहीं आप इससे, आप आई विटनेस हैं या विक्टिम हैं, कुछ भी हैं, आपने देखा है, महसूस किया है, तो आपने उसको उस समस्या को खत्म करने के लिए क्या किया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण समस्या है।
जी जी प्रशांत, नितिन, जिस तरीके से विसल ब्लोअर्स इस मामले में उठकर खड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या ये थोड़ा हैरतअंगेज नहीं है इतने सारे विसल ब्लोअर्स अपनी बात खुले तौर पर रखना और उनकी सुरक्षा जिस तरह से की जा रही है उस पर भी सवाल उठे।
विनीत, मेरे ख्याल से ये ऐसा मामला है जो मैंने अपने पत्रकारिता का जो मेरा करियर रहा है पिछले 10-12-14 साल का, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कोई ऐसा कथित घोटाला जिसमें इतने विसल ब्लोअर हैं। और यकीन मानिए, मुझे लगता है कि 4 से 5 जो विसल ब्लोअर हैं उन सबकी भूमिका अलग अलग ही रही है और उन सारी भूमिकाओं ने, सारों ने मिलकर इस मामले को जिस तरह से ऊपर तक उठाया है, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है। जांच होगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि मतलब जिम्मेदार कौन था, कोई था या नहीं था, लेकिन वाकई में विसल ब्लोअर की भूमिका बेहद अहम रही है।
हमारे साथ कुछ श्रोता और जुड़े हुए हैं। हेलो,
हाँ सर, मोहम्मद सईम बोल रहे हैं सर।
जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं पहले बताइए।
सर मैं बोल रहा हूँ पीपलसाना, जिला मुरादाबाद, यूपी से।
जी अपनी बात रखिए सर।
सर मेरा तो पहले, मैं सुशांत जी जैसे लोगों को पहले बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस लड़ाई को बहुत बड़े बहुत बड़े तरीके से लड़ा है।
प्रशांत नाम है उनका, बहरहाल अपनी बात रखिए।
जी देखिए सर, अगर इस तरह के घोटाले होते रहेंगे तो अयोग्य लोग तो हैं कुर्सी पर बैठ जाएंगे और अयोग्य लोग दूर हो जाएंगे देश से, तो ये बहुत बड़ी समस्या है।
लेकिन आप उत्तर प्रदेश से हैं और कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो परीक्षार्थी वो उत्तर प्रदेश से ही आए हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में नकली कैंडिडेट बनकर।
जी जी, यहाँ तो बहुत कुछ होता है गड़बड़।
अच्छा, क्या क्या गड़बड़ होता है, कुछ आपने देखा होगा?
अरे सर, यहाँ तक देखिए सर, यहाँ तो हम बहुत, यहाँ छोटे गाँव में है, यहाँ तक हाई स्कूल इंटरमीडिएट काफी लिखा तीन जगह तक।
तो जी, तो जिस तरह से एग्जाम्स होते हैं इस पर क्या कहेंगे, भरोसा उठता है? आपके जहन में क्या आता है?
देखिए बिल्कुल भरोसा उठता जा रहा है हमारा, और यही अगर यही मैं बात चलती रही तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता, लगता है फोन फिर कट गया है। बहुत कम समय बचा है, प्रशांत आखिरी कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से CBI जांच के आदेश दिए हैं, कितने पूर्व उम्मीद है आप? मैं फिर से दोहराऊंगा,
नहीं भी जांच होगी तो फिर से हम प्रयास करेंगे, फिर से अपने जैसे और लोगों को सामने लाएंगे और इस पर तब तक लड़ते रहेंगे जब तक मूल रूप से जो इसकी रूप से जड़े हैं उनको खत्म न कर दें।
जी बहुत शुक्रिया।
मैं यहाँ पर हम बहुत जल्दी एक आध दो दिन में एक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं विसल ब्लोअर।
जी,
और इस तरीके की जितनी चीजें हैं, हमारी सोच उस वेबसाइट को शुरू करने के पीछे ये है कि जितने भी ऐसे
चीजें हैं वो सामने। जी 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 प्रशांत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नितिन, 30 सेकंड में क्या क्या चैलेंजेस होंगे CBI के सामने, बहुत बहुत संक्षेप में?
मेरे ख्याल से विनीत, सबसे बड़ा चैलेंज CBI के सामने यही होगा कि SIT और STF के जो तार हैं, जो तमाम तरह के तार हैं, उन सबको एक साथ जोड़ना, और मुझे लगता है कि CBI के लिए ये काम आसान एकदम नहीं होगा।
BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव और हमारे साथ इंदौर से जुड़े थे प्रशांत पांडे, बहुत शुक्रिया, और उन तमाम श्रोताओं का जिन्होंने आज BBC इंडिया बोल में हिस्सा लिया। और कार्यक्रम के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। बोस्निया में सर्बेनित्सा नरसंहार की 20वीं बरसी पर मौजूद सर्बिया के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वुटिच पर वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने हमला किया। लोगों ने उन पर बोतलें फेंकी और अपशब्द कहे। बरसी के दौरान वुटिच नरसंहार में मारे गए लोगों में से 136 लोगों को श्रद्धांजलि देकर लौट रहे थे। ग्रीस की संसद ने कर संकट से निपटने के लिए सरकार के ताज़ा प्रस्तावों को बहुमत से मंजूरी दे दी है। देर रात तक चली संसदीय कार्यवाही में 251 सांसदों ने सरकार को कर्जदाताओं से समझौता करने के लिए समर्थन दिया। मलेशियाई हवाई जहाज MH-17 में मारे गए यात्रियों के परिजन शनिवार को श्रद्धांजलि सभा के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर में इकट्ठा हुए। इस विमान को पिछले साल यूक्रेन के ऊपर से गुजरते वक्त मार गिराया गया था। मद्रास हाईकोर्ट ने बलात्कारी और पीड़िता के बीच मध्यस्थता का निर्देश देने का अपना विवादास्पद आदेश वापस ले लिया है। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट ने अभियुक्त को दी गई अग्रिम जमानत भी रद्द कर दी है। कोर्ट ने अभियुक्त को 13 जुलाई तक सरेंडर करने को कहा है। मिस्र में सिनेमा की पहचान रहे अभिनेता उमर शरीफ का शुक्रवार को निधन हो गया, वे 83 साल के थे। BBC समाचार।
शुक्रिया अमल चौधरी और शुक्रिया हेमंत कुशवाहा का भी जो स्टूडियो संभाल रहे थे। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी ठीक 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में।